उसकी तो बात छोड़ो, यहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठे हैं, अभी सुना कहीं विधानसभा में अध्यक्ष बैठे हैं, कोई शराब पी करके शराबी और जा करके पहुंच गया वहाँ और कहा मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उसी और पर बैठ गया।
दिल्ली में हुआ था, बोले मैं मुख्यमंत्री मदनलाल पुराने के जाए,
कोई कह रहा मैं राष्ट्रपति हूँ, बैठ गया हो गया। अभी उसको लोग पागल कहेंगे, उसी तरह से कोई मूर्ख जी यदि ये कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्त्वम असि, तो इसे प्रभु को क्रोध होगा ना क्या होगा, इसलिए प्रभु को क्रोध हो जाता है। इसलिए ये भी कंकड़ और पत्थर के समान, एक समय गुरु जी के साथ में हम लोग कहीं प्रचार में गए थे, आजकल तो तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ नहीं देखते, कोई शास्त्रार्थ नहीं अभी पढ़ता है, पहले शास्त्रार्थ होता था,
शास्त्र पढ़ेगा तो शास्त्रार्थ पढ़ेगा,
बड़े भयानक बात, बड़े बड़े सब शास्त्रार्थ जिसमें कि हजारों लोग आते थे, तो गुरु जी के साथ में कहीं गया तो वहाँ पर बड़ा भारी बड़े बड़े पंडित लोग आए और इधर से गुरु महाराज जी थे, हम लोग दो चार आदमी थे, बड़ी भारी सभा लगी, तो उसमें विचार हो रहा था, एक रिटायर्ड कोई जज थे, वो मायावादी कुछ भाव के थे, उन्होंने कहा जी सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ आप भी ब्रह्म है, सब कुछ है। गुरु जी ने उनको समझाया ये आप पैखाना है, टट्टी है आप,
ब्रह्मानंद
टट्टी कैसे, अरे मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नहीं आप टट्टी हैं, तो कैसे, उन्होंने कहा एक चींटी है, चींटी गुड़ खाने के लिए गई, गुड़ माने कैसा गुड़, पतला गुड़, राब जिसको कहते हैं, आजकल राब होता है कि नहीं, तंबाकू से बनते हैं, मीठा गुड़ पतला सा गुड़ रवा युक्त सीरा, तो वो सीरा खाने के लिए गई और वो उसी में लिपट गई, और लिपट गई जब ना तो वो सिराई जैसे होगी, दूसरे बंदर आया उसको लपट करके खा गया, वो चीटी फीटी सब उसके लिए। हम लोग भी यदि खाएंगे तो क्या करें, चीटी निकलेगी उसमें, चीटी का पैर फूट करके उसमें मिल गया, सिर मिल गया, सब मिल करके वो चीटी एकदम बन गई मीठा। अब यदि वो चीटी गुड़ में निभर गई लपट गई तो उसको ये मीठा लगेगा, अब उसको जब तक अलग थी खा रही थी तब तक तो मीठा है, और जब उसमें निपट करके और गुड़ ही बन गई और बंदर ने उसे खा लिया गुड़ समझ करके, अब उसको मिठास का ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। और एक चींटी टट्टी में गई पतली में और उस निपट करके टट्टी बन गई, तो टट्टी का दुर्गंध उसको आएगा, तो ऐसे ही आप ब्रह्म बन गए, तो ब्रह्म बगैर तो वो टट्टी है या आनंद है आपको कैसे पता, आपको तो पता ही नहीं लगेगा, इसलिए जब आनंद की अनुभूति नहीं रही पृथक रूप में तो टट्टी की भी अनुभूति नहीं रहेगी, तो दोनों एक ही बात है। एक घंटा तक वेद उपनिषद और सब वेदांत के सूत्र और मंत्र सब करते करते थक गया, किंतु वो प्रमाणित नहीं कर सका जब उनका ब्रह्म आनंद में, किंतु कृष्ण आनंद में है, भगवान आनंद में है, क्यों, हम कहने वाले हैं ये कृष्ण को देख करके उनका रूप देख करके मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कहने तो, किंतु ब्रह्म होने के बाद में कौन कहने वाला है जी ये ब्रह्म आनंद में है, है? जितने आदमी हैं वो सभी ब्रह्म हो जाएं, तो ब्रह्म आनंद में है ये कहने वाला कौन रहेगा, इसलिए जितनी भी अवर्जनाएं हैं सब में गंदी चीज ये है जो मंदिर के दीवार में लगी हुई है, क्या है ये, जैसे अलकतरा होता है ना,
कोलतार,
कोलतार गोलतार होता है, कोलतार कोलतार या गोलतार, और वो दीवार पर या कहीं लग गया और एक वर्ष हो गया उसमें लगा हुआ, वो छूटेगा जल्दी पानी देने से, पानी देने से और कठिन बन गया, और झाड़ू से छूट जाएगा कि नहीं, ये ऐसा है, ये मुक्ति की वांछा सबसे अधिक वांछनीय ये गंदी चीज है भक्ति के लिए। महाप्रभु जी ने क्या किया, रगड़ करके किरासन तेल दे करके उठाया, रगड़ करके साफ करके उसको, इसे मुक्ति की इच्छा सबसे खराब है, इससे बढ़कर के और कोई खराब चीज नहीं। विशेष करके एक चीज और बतला रहे हैं, बहुत से लोग मैंने अधिकांश लोग धर्म के नाम पर हरिनाम विग्रह और भागवत बेच करके जीविका निर्वाह करते हैं। दुकान पर बेचने का नहीं, जब विग्रह दुकान पर बिक रही है भागवत भी बिकती है, ऐसा नहीं, कीर्तन करके पैसा लेना, भागवत पढ़ करके पैसा लेना, मंत्र दे करके, ये बहुत बड़ी भारी बीमारी है और गंदापन है। इसलिए धर्म के नाम पर हरिनाम को बेचना, मंत्र को बेचना, विग्रह को बेचना और भागवत जीवी होना, ये लोगों को ठग करके धन लेना ठाकुर और भगवान के नाम पर, भागवत के नाम पर, ये सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति नहीं आती, इसलिए इन सब चीजों से हमें दूर रहना। दूसरे व्यवसाय के द्वारा हम जीविका अर्जन कर सकते हैं सब कर्मों के द्वारा, और यदि ऐसा करें कि भागवत पाठ करेंगे पैसा आएगा, जीवन निर्वाह होगा, भक्ति सुख जाएगी, इसे ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, लोग कीर्तन कराते हैं तो कहते हैं कीर्तन चलेंगे हमारा एक रुपया और करताल का दो रुपया और बड़ा मजीरा है ना इसका चार रुपया और मृदंग का दस रुपया, तो एक
दो
तीन
चार सात
सात
दस
दस बीस रुपया आप देंगे एक एक व्यक्ति के लिए, तो हम चलेंगे अब जा करके कीर्तन करेंगे और पैसा लेंगे उसे, तो अच्छा जे कोई मजदूरी करते, जीविका निर्वाह करके भगवान का भजन करते। इसलिए ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हम लोग पढ़ना चाहते हैं वेद वेदांत और भागवत, किस लिए, इसीलिए ये हम भी बुद्धिमान होकर के संस्कृत का नर्बल उच्चारण करेंगे और सब लोगों को मुग्ध कर देंगे और बात लोग प्रतिष्ठा करेंगे, भक्ति की वृत्ति के लिए नहीं, इसलिए भक्ति वृत्ति के लिए ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं। पहले मैं भी समझता था ऐसा, किंतु देखता है कि इसमें गड़बड़ी, भक्ति की वृत्ति हमको होनी चाहिए, ये कैसे आए। इसलिए प्रभुपाद जी निर्देश कर रहे हैं और इसमें कहा निषिद्धाचार, निषिद्ध माने जो निषिद्ध है भक्ति के लिए, वो क्या, स्त्री संगी एक अपराधी कृष्णा भक्त आ, अर्थात स्त्री पुरुषों का परस्पर संग आशक्ति, एक विवाहित स्त्री के अतिरिक्त सबको माँ बहन बेटी, और उसी तरह से स्त्री भी उसी प्रकार से पिता भाई और पुत्र इस रूप में परस्पर देख करके चलते, नहीं तो अन्नाभिलाषी हो जाएंगे। इस प्रकार से जन्म जन्मांतरों की धूली हमारे हृदय में लगी हुई, हृदय निर्मल नहीं, हृदय एकदम मैला हो जाता। महाप्रभु कहते हैं कि पहले इसको दूर करो, कैसे दूर करो, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत मुश्किल से अनुसंधान करके एक झाड़ू निकाला, अनुसंधान किया, इन्वेंशन किया, वो झाड़ू क्या किया है,
नाम हट
झाड़ू, उसने क्या किया, एक एक ग्राम में पांच पांच छह छह लोगों की एक टोली बनाई श्रद्धालु लोगों का, जैसे तुम लोग नाम संकीर्तन करना सवेरे एक बार घुमाना नाम करते हुए, ऐसे ऐसे हजारों गांव में नाम हट खुला, नाम हट नाम माने नाम का बाजार, और उन्होंने कहा कि मैं झाड़ूदार हूं, झाड़ू देने वाला मैं, झाड़ूदार कैसा होना चाहिए, जो हृदय तक उसका झाड़ू पहुंच जाए, भक्ति विनोद ठाकुर जी वो झाड़ूदार बने, झाड़ूदार होना भी साधारण काम नहीं है, जो सब लोगों का हृदय निर्मल कर दे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने झाड़ू दिया सबके लोगों का हृदय निर्मल कराने की चेष्टा। उसमें जो कामचोर हैं, आलसी हैं, जो नहीं चाहते, उसमें किसी प्रकार से भाग कर भी निकल करके इधर उधर चले जाए। महाप्रभु जी क्या करेंगे? इच्छा करने से तो कर सकते थे, किंतु इनकी जब नवदीप में आरंभ किया बड़ुआ और शासन दिली छात्र संस्कृत के न्याय के, यहां से भाग करके निकले, कुछ पुरी में पहुंच गए और कुछ बनारस में पहुंच गए। महाप्रभु जी तुम देखो भाग करके कहा जाता है वहीं पर मैं भक्ति की बाढ़ ले जाकर के डुबाऊंगा, इसलिए पहले गए कहां और वहां पर साधम भक्ताचार्य को परास्त करके वहां पर भक्ति के बाढ़ में सबको डुबा दिया और उनको भी डुबा दिया। और इसके बाद में वो बाढ़ की धारा किधर मुड़ी?
काशी की तरफ,
उत्तर भारत में काशी, और काशी में आकर के
प्रकाशानंद को दे दिया।
प्रकाशानंद 60,000 शिष्यों का गुरु, वही ब्रह्मकार। उन्होंने कहा जी यहाँ पर तुम्हारा ये फल बिक्री नहीं होगा, अजय सस्ते में दे जाऊंगा, बहुत सस्ते में, अजय सस्ते में कोई नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मैं लौटा करके देगा, मैं देखूं तो बस। उन्होंने ध्वनि आरम्भ की, फल्लो फल्लो कहते हैं, उन्होंने कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही नहीं हाथ उठा करके हरि बोल, आंखों से आंसुओं की धारा गिरते हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से किया, ये सारी काशी की समस्त जनता उनको देखने के लिए आई और जो आया उस भक्ति की धारा में सब डूबा। इस तरह से इन लोगों को भी परम भगवत भक्ति मना दिया, भारतवर्ष में शबक पूर्ण करके सबको भक्ति नहीं मना। ये है संवार्जनी, हर संकीर्तन कल युग में केवल एकमात्र ऐसा है, यदि नियमित रूप से उन्हें करें तो ये सब दोष दूर हो सकते हैं, भगवान को राधा कृष्ण को हृदय में बैठा सकते हैं। इससे बढ़कर के जगत में हमारा कोई कर्म नहीं, आज ही नहीं कर वंशा कल्प कौन चिंतन करेगा। कृष्णदास है कोई ऐसा प्रतिभाशाली परम तेजस्वी प्रजा पालक और जो जो गुण होना चाहिए उनको एक तीर्थ यात्री से ये पता चला कि इस भूमंडल में समुद्र के किनारे नील पर्वत उन्होंने अपने चार लोगों को लगाया कि ये किधर में है, जिसमें उनके पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति, कोई कहते हैं जैसे वो विद्यापति वो स्वयं पुरोहित हैं और कोई कहते हैं उनका लड़का, किंतु स्कंद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा में उनको पुरोहित का छोटा भाई बतलाया और लोग सब दूसरी दिशाओं में गए, ये पूर्व दिशा में गए और वहाँ पर जाने पर वो समुद्र के किनारे पहुँचा। बहुत ही सुंदर पर्वत, रमणीय स्थान देख करके इनको हुआ न हो यहीं पर कहीं ये ठाकुर जी हो सके। रात में ठहर गए एक सबर के यहाँ और सबर उनकी पूजा करने जाता था,
उन्होंने इस चीज को पता लगाने के लिए सवर की लड़की से प्रीति कर और कुछ दिनों में ही उसका उसके साथ में विवाह भी हो गया। उन्होंने ये नहीं बतलाया कि हमारा पहले ही हमारी शादी हो गई है या ब्राह्मण हूँ या क्या हूँ। इसके बाद में अपनी पत्नी से कहा तुम पिताजी से पूछो ये वो कहाँ पर जाते हैं। पिताजी पहले नहीं बतलाना चाहते किंतु अंत में विष पान करके मर जाऊंगी इसलिए आपको बतलाना पड़ेगा। उन्होंने कि आँख बंद करके इसको ले जाकर के दिखला देंगे और वो आँख बंद करके ले गए और जब वहाँ गया तो उसकी सुगंध पा करके और ठाकुर जी का दर्शन करके मुक्त हो गया और वो पुष्प चुनने के लिए गए और तिलक के लिए चंद्रमा गढ़ने के लिए गए। इतने में ये देखा जी एक कौवा उसी कुंड के ऊपर में बैठा हुआ था और उंग रहा था वो गिर गया बस गिरते ही वो मर गया और उसके शरीर से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए एक से विग्रह निकली और वो गरुड़ आए उनको बैठा करके विपत्ति कर और वो देखा जैसी बात हुई बस साथ ही साथ भी पेड़ पर चढ़ने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई तुम्हारे द्वारा बहुत काम होगा काम वक्त त्याग करो। साथ ही साथ वो आ गया उसका ससुर भी आ गया और उन्होंने दर्शन करा करके और फिर घर ले गया आप बंद करके। अब ये राजा के पास में जाने लगे खबर देने के लिए उसने कैद कर लिया किंतु आकाशवाणी हुई नील माधव की नहीं इसको तुम छोड़ दो इसमें बहुत ही जगत का कल्याण होगा तो उसने छोड़ दिया। अपनी पत्नी को उन्होंने आश्वासन देकर कि मैं जल्दी आ रहा और चले गए राजा को खबर दिया। राजा आए जब तक वो आते हैं इतने में समुद्र की लहरों से बालू से एकदम सब जगत तक मंदिर लुप्त होगा पहाड़ भी दब गया और गांव भी दब गया सब कोई चिन्ह नहीं। उसने प्राय प्रवेशन किया बिना खाए पिए समुद्र के किनारे कुश पर बैठ करके और आराधना करी हमने मर जाऊंगा यदि आप दर्शन इतने में ब्रह्मा जी आकर के उनको वैकुंठ लोग ले गए और वहां पर नील माधव का दर्शन किया। इन्होंने प्रार्थना की आप चलिए उन्होंने कहा मैं अब इस मूर्ति में नहीं जाऊंगा मैं अब चार मूर्तियों में जाऊंगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्रवर्ती। कोई चिंता मत करो मैं एक पेड़ की धड़ के रूप में गोलाकार जाऊंगा लाल उसमें चक्र के चिन्ह रहेंगे तुम तो वहां पर जाना समुद्र के किनारे हमको लेकर के हमारी मूर्ति बनाए सब काम अन्यास। उन्होंने पहले से मंदिर बना रखा था जाने के पहले जब आए तो देखा कि से दूसरा एक राजा राजे मैंने मंदिर बनाया ये कहते हैं कि मैं मंदिर बना रहा। अब दोनों में कुछ विवाद हुआ इतने में कालभूषुंडी जी को वट वृक्ष पर थे अक्षय को अक्षर उन्होंने आकर के कहा जी नहीं ये तो इंद्रदिम ने बनाया था बालू में डूब गया था तुमने पीछे से उसका उद्धार किया और उसमें कुछ रिपेयर किया है इसलिए ये मंदिर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हें बना दिया तुम्हें कहा दिया। वो राजा अंत में लज्जित होकर के वहाँ से चला गया गालोब उनका नाम। इसके बाद में वहाँ पर न जाने कितने मंदिर हुए आज तक लाखों बार वही पुराना मंदिर वो नहीं है लाखों बार वहाँ पर हुए। जैसे कृष्ण जन्मभूमि में 5,000 वर्ष पहले इन कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ जी ने वहाँ पर एक मूल मंदिर बनाया केश आदि केशव उस स्थान पर आज 5,000 वर्ष में कितनी बार वो बदला। अभी ये जो मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तुड़वा करके मस्जिद बनवाया ये 14वीं सदी में बनी और उसको भी 14वीं सदी में होते हुए 19वीं सदी कौन सदी
18वीं 20वीं 21वीं सदी
अभी नहीं वो औरंगजेब जब वो उसको तोड़वाई वो 14वीं सदी में बना था 14, 15, 16 300 वर्ष के बाद उसने तोड़वाया। अब उसके बाद में फिर अभी हाल में हम लोगों के सामने ये मंदिर बना। तो 5000 वर्ष में इतना अदल बदल हो गया,
तो ये भी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सीमेंट का है
तो वो मंदिर करोड़ों वर्ष पहले सतयुग के आदि का, वैसे कहो तो इस कितनी बार प्रलय हो गया, एक दो बार नहीं, कितने ब्रह्मा बदल गए तभी से वो मंदिर बने स्थान, और वहाँ पर बीच बीच में बनता है, करता है, बनता है, ऐसे करता है। इसलिए अभी जो मंदिर बनाए ये 14वीं सदी का मंदिर है, जिसके अब पत्थर गिर रहे हैं, वो पंजिका उदाला पंजिका या क्या नाम है उसका, जगन्नाथ जी की वो पंजिका होती है, माने उसमें विवरण रहता है।
अच्छा,
उसके जो जो कुछ होगा, जो राजा होगा, जो होगा, जैसे मंदिर की सेवा होगी, प्रतिवर्ष रथ यात्रा कैसी हो रही है, सेवा कौन कौन कर रहा है, ये सब उसमें लिखा जाएगा। पंजिका, पंजिका माने वो पुस्तक के आकार में वो हस्त उसको लिखने वाले एक आदमी, वो मुझको याद नहीं आ रहा ये कौन सी पंजिका उसका नाम है, उसमें ये सब विवरण रहता है। तो उसमें आज से कितने वर्ष पहले उसमें लिखा है जो अमुक साल में एक पत्थर बीच से गिर जाए। अभी हम लोग गए थे तो देखा जी वो पत्थर लंबा चौड़ा है, एकदम ठीक ठाकुर जी के सिंहासन के सामने कम से कम तो 20 फुट लंबा।
तो वो तो भविष्यवाणी,
हाँ तो वो गिर गया ना, ये मंदिर कब ये गिर जाएगा ये इसको भी लिखा है, कोणार्क का मंदिर कब बना है, कब गिरेगा, कब क्या होगा, उस सबका विवरण उसमें उस पंजिका है। तो उसके अनुसार में भविष्यवाणी भी है, अब भविष्य में क्या होगा, और जब जब जो जो हो रहा है उसका भी विवरण
इसमें लिखा जाता है।
तो उसमें ये जगन्नाथ जी के प्रकट का इस सब का भी वर्णन उसमें है, किंतु इंद्रद्युम्न वाला तो उसमें है जो कि स्कंद पुराण में जो बतलाया गया है उसके अनुसार में है, थोड़ा सा कहीं इधर उधर। पद्म पुराण में है उत्कलखंड, उत्कलखंड में कुछ है और कुछ है इसमें इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा है, तो दोनों में है थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो करीब करीब एक ही जैसा मैंने बताया। अब वो उन्होंने आकर के वहाँ पर बैठ गए, एक मोटा सा एक पेड़ का धड़ कम कम से कम तो 8-10 गज लंबा, बहुत भारी विशाल, और लाल रंग का उसमें चक्र के चिन्ह वो बहता पड़ता है। इन्होंने बहुत चेष्टा की उठाने के लिए, हाथियां लगाई जो उसको उसको निकलवाएं, उसको बांध करके लोहे के रड्डों से और उसको हाथियों को लगा करके निकलवाने की चेष्टा की, नहीं निकला। सेनाओं को लगाया, बड़े बड़े लोगों को लगाया, किंतु कुछ भी नहीं। जैसे क्रेन से उस समय ऊपर में पत्थर है ना, काली में कैसे लगते थे, उस सिस्टम से भी लिया नहीं, आकाशवाणी जैसे नहीं होगा। जो पहले सबर सेवा करते थे उनको बुलाओ, और जो कि राजा को खमर दिया उसको बुलाओ, वो लोग आकर के कुछ व्यवस्था करते, तो उनको बुलाया गया। तो एक तरफ में वो लगा सबर, उसका नाम था
विश्वावसु,
और एक तरफ में विद्यापति। हाँ, लगे मैंने क्या, उनकी पूजा विधिवत की, अर्चन किया और उनको कहा कि आप स्वयं ही प्रभु हैं, आप स्वयं रथ पर पधारे, वहीं पर सोने का रथ बनाया था उस पर लेकर के निकट में कर दिया। बस दोनों लगे प्रार्थना किया और थोड़ा सा उठाया, अपने आप रथ में उठ करके बैठ गए, और बैठ करके फिर उनको लाया गया मंडप में, और मंडप में रखा गया है, देश विदेश के लोगों को निमंत्रण किया गया, ये मूर्ति सुंदर से सुंदर बनानी है, आए सब औजार लेकर के अपना अपना यंत्र। और जब बसले से रूखानी में जबकि ऐसा दिया तो छंड करके टूट जाए, लोहा से भी अधिक कड़ा। अंत में जब कोई किसी से नहीं हुआ है तो ये बतलाया जैसे मूर्ति स्वयं अपने आप प्रकटित होगी, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अंत में जगन्नाथ जी ही स्वयं या नीलमाधव प्रभु ही स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए, गौर वर्ण का बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण, और वो आकर के बदलाए जो मैं तो कारीगर हूँ, यदि आदेश हो तो मैं इनको प्रकट करूँ। इन्होंने राजा ने और रानी ने कहा कि हाँ कीजिए, एक मंडप बनाओ और मैं 21 दिन उसके अंदर में रह करके बनाऊंगा, दरवाजा मत खोलना। उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ा भारी मंडप बना करके वो भीतर ले गए उसको, और उसमें वो घुसा और बाहर भीतर से कबाड़ बंद कर। 5-6 दिन 7 दिन हुआ तो रानी ने कहा अरे खाया पिया नहीं और उसमें मरेगा, एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, कोई ठुक ठक तो शब्द हो रहा ही रहा है, शायद वो अब तक दम उसमें उसका हो गया है, अंत हो गया हो। राजा ने बहुत समझाया, ठाक तो जाओ 21 दिन के बाद में खोलने के लिए। 7 दिन हुआ, 8 दिन है, रानी रोज रोज कहती है, अब 14वें दिन वो मानी नहीं। राजा कहा जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, आज जल्दी खोलिए जो कुछ होगा देखा, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं, ब्रह्म हत्या लग जाएगी हम लोग मरेंगे। तो राजा ने तोड़वा दिया दरवाजा और ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था, इसे 14 दिन में वो हुआ नहीं, और ठाकुर जी की इच्छा जो उसी रूप में है, उसी रूप में हंस करके वो अंतर ध्यान हो गया, फिर उसी को वहां पर प्रतिष्ठा दिया गया। वर्ष में एक दिन रथ पर चढ़ करके वो वन विहार के लिए अभी तक इसी रूप में चल रहा, किंतु महाप्रभु जी जब आए तो उसमें एक और उपाख्यान उसमें जुड़ गया। जगन्नाथ जी को पहले बैकुंठ के अधीश्वर नारायण के रूप में माना जाता है, और उनकी पत्नी बिमला देवी वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और इस रूप में बलदेव जी को भी उनके भाई के रूप में माना जाता है, इस रूप में उनकी पूजा होती और रथ भी निकलता था। महाप्रभु जी आए तो उसमें एक और उपाख्यान जुड़ गया, बृहद भगवतामृत, महाप्रभु जी की भावना के अनुसार वो क्या हुआ, वो इसमें ये जुड़ा, महाप्रभु जी ने जोड़ा। अब तक वो अर्चन मार्ग था और ऐश्वर्य भाव का वो सब उद्दीपक था, महाप्रभु आए अब भाव मार्ग में ले आए, अनुराग उसमें लाया। कृष्ण और बलदेव एक दिन द्वारका में राजसभा में बैठे हुए थे, इधर 16,108 महिषियां रोहिणी मैया को लेकर के बैठी और उलाहना देने लगे, इतने में कंस की मैया भी आ गई पद्मा, और ये बात चल पड़ी रोहिणी और रुक्मिणी जी और सत्यभामा ने ये कहा हम लोग विश्व में सबसे सुंदरी हैं, युवती हैं, समस्त प्रकार के गुणों वाली हैं, और 16,108 हैं, किंतु कृष्ण को कोई भी प्यारी नहीं, हम लोग असमंजस में हैं कि हमको वो प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, किंतु गोपियां उनको वशीभूत करने में समर्थ हैं, प्रेम से वशीभूत कर लेती हैं उसके विषय में वो समर्थ हैं, इसलिए वो समर्था रति वाली हैं और ये समंजसा रति वाली। ऐसा क्यों होता है? ग्वालिनों में क्या विशेषता है? वन वन में विचरण करने वाली, कोई सदाचार नहीं जिनमें, कर्म कुशल भी नहीं है। अब वन जंगल में रहने वाली कितनी सुंदर होंगी, और फिर भी कृष्ण हमें नहीं चाहकर, इच्छा नहीं है जब वो
ब्रह्मचर्य कितना सुंदरी होंगी,
ब्रह्मचर्य कितनी सुंदरी होंगी, और उन्हें क्या गुण हो सकता है? प्रेम करना तो सीखा नहीं, और हम लोगों ने तो राज परिवार में राजघराने में होकर के राजकुमारी जैसे सभी, तो उनमें क्या खूबी है? किसी को रूढ़ मैया बतला रहे, वो प्रेम की कहानियां वृंदावन में कृष्ण और गोपियों के संबंध में जो बतलाना रहा हूँ किया, पूर्व राग से आरंभ कर और अभिशाप से लेकर राष्ट्र इत्यादि तक उनकी कितनी लीलाएं हैं जो जिसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं, और कृष्ण वहीं पर रस के समुद्र हैं, ये सब चीजें बतलाने हैं। अपनी हाथों आंखों से देखी हुई बातें घर में, यशोदा जी के घर में आती हैं राधा जी, तो उनका कैसा प्रण है? कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो ये मैया भी बहुत दूर तक जाती है, उस समय गोपियों के साथ में इनका कैसा संपर्क है, और कुछ इधर उधर से सुनती भी हैं उनकी सारी बातों को बतलाने, यहाँ तक कि राष्ट्र की बातें भी बतलाने लगी। ये कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप, मत वाला रूप ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं हो सकता, संभव पर नहीं। एक झलक देख लाया था नवीन वृंदावन में तो सप्तभामा और पद्मा तक भी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, तो और क्या था। विशेष करके दास्य रस का भाव ये प्रेम तक पहुंचता है, शांत वाला तो कहीं नहीं जाता। सख का प्रेम साधारणतर अनुराग की सीमा तक जाता
है, प्रथम स्टेज पर,
किंतु उसमें भी सुबल इत्यादि का महाभाव को स्पष्ट कर लेता है, वात्सल्य का अनुराग तक जाता है, ये चरण। और रुक्मणी सप्तभामा इत्यादि का महाभाव तक जाकर के रूढ़ अवस्था तक जाता है, जिसमें प्रेम वैचित्र इत्यादि भी साधारण रूप में दिखते हैं। प्रेम वैचित्र माने क्या? प्रेम वैचित्र माने दोनों के संजोग रहने पर भी, मिलन होने पर भी हठात ऐसे भावों के द्वारा विभावित हो जाते हैं जिसमें कि कृष्ण यहाँ नहीं है, प्रियतम नहीं है, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये भावार्थ इसको प्रेम कहते हैं। इसको रुक्मिणी सप्तभामा में भी कुछ अंश तक दिखाया, ये कृष्ण सोए हुए हैं अपने पलंग पर। रुक्मिणी सप्तभामा प्रभृति का विशेष करके आठ पट रानियों का, और उन सब में सप्तभामा विशेष रूप से ये भाव है, रुक्मिणी जी का ऐसा भाव है कि कुरली एक पक्षी विलाप करती है रात में, अपने पति से अलग हो जाती है, एक किनारे उसका पति दूसरे किनारे पर है, बड़े करुण स्वर से क्रंदन करती है। तो ये दोनों कह रहे हैं और तुम किसके लिए विलाप कर, जैसे कृष्ण हमको छोड़ करके हमारे प्रियतम चले गए, हम के विरह में डूब रहे हैं, मानो तुम भी उनके गिरह में डूब करके इस प्रकार से रो रही है, याद कर रही है। केवल यही नहीं, और भी उदाहरण दे करके उन्होंने बताया, मुझे पूरा याद नहीं। तो खुर्री क्या ही नहीं, और भी उसके साथ साथ में कौन कौन सा काम। तो यहाँ पर दिखला रहे हैं कि कृष्ण तो पासी में सोए हुए हैं, पलंग पर हैं, और ये इस प्रकार से बोल रहे हैं। कुररी कहाँ है, रो रही है, और उसे कहे तो इसीलिए जिससे हम सब से रो रहे हैं, रो रही हैं, तुम भी रो रही। ये है महाभाव में रूढ़ अवस्था में प्रेम बच्चित, किंतु गोपियों का जो प्रेम बच्चित है इसे कोटि गुना श्रेष्ठ। उसमें कृष्ण सामने बैठे हैं, कृष्ण की गोदी में बैठी हैं, और कुछ ऐसा भाव आया, अरे सखी कहाँ गए कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, और उठ करके खोजने के लिए देख रही इधर उधर दौड़। कृष्ण ने देखा और एकदम स्तंभित हो गए उनके भाव, इसलिए प्रेम वैचित्र तक तो हुआ। इससे भी आगे अधिकृत भाव ये उन लोगों में नहीं
है, इसे में नहीं,
ये केवल गोपियों में ही। और उसमें भी ऊपर जब चले जाते हैं तो मोहन इत्यादि भाव चंद्रावली के सखी तक में भी नहीं, केवल ललिता इत्यादि भाव, और उससे ऊपर का जो भाव एकमात्र स्थिर भाव से श्रीमती राधिका में, और कहीं वो नहीं। उसमें विचित्र भाव, मिलन में वियोग, वियोग में मिलन, ऐसी दशा जो किसी को भी संभव पर नहीं है। ये सब का वर्णन कुछ साधारण रूप में वो कर रही थी जितना जानती है। कोई जरूरी नहीं है कि उस रस में रहने पर ही व्यक्ति उसका वर्णन करेगा, तटस्थ होकर के ये विचार आते हैं। ऐसा डूबा हुआ व्यक्ति उसमें नहीं ये सब का वर्णन करेगा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी तटस्थ होकर के श्रीमद् भागवत वर्णन कर रहे हैं, इसलिए ये सबको। नहीं तो यदि एक में डूब गए होते ना से पढ़ते। तो इस प्रकार से रोनी मैया यद्यपि वात्सल्य रस की मूर्ति है, किंतु वर्णन कैसे करती है, उसमें वर्णन करती है, इसलिए यह रसाभास से यार ये कोई गड़बड़ी की बात नहीं, सभी जानती हैं, किंतु वो भाव कृष्ण के प्रति। यदि उद्धव जी वर्णन कर सकते हैं जिनमें ये भाव नहीं है तो दोष का कारण नहीं हो सकता, वर्णन कर सकते हैं, किंतु ब्रज की एक धूली कणा भी नहीं हो सकते। एक गोपी का भाव नहीं, एक सखा का भाव नहीं, एक मयूर जैसे कृष्ण को देख करके नृत्य करता है वैसे ये नहीं कर सकते, इसलिए तटस्थ रूप में ये सब वर्णन किया है। तो वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते करते प्रेम में एकदम विभोर हो गए, और सब रानियां भी विभोर हो गई। कृष्ण से रहा नहीं गया, वो सभा स्थली से उठ करके बलदेव जी भी उनके पीछे पीछे आए। जब वो घर में राजभवन में घुसने लगे, सुभद्रा जी वहां पर खड़ी थी, ऐसे हाथ कर दिए, भैया अभी मत जाओ, मैया ने मना किया, निषेध किया, थोड़ी देर के बाद में कथा समाप्त हो जाएगी तब आप जाएंगे, अभी विघ्न हो जाएगा, आपके सामने भी ये बातें नहीं हो सकेंगी, इसलिए मना किया, और साथ साथ में बलदेव जी हैं इसलिए नहीं हो सकता। कृष्ण वहीं पर ठहर गए, बाएं तरफ में सुभद्रा जी के कृष्ण, और दाहिने तरफ में सुनते सुनते वो भी एकदम द्रवित हो उठे। कृष्ण का पहले हाथ और पैर दोनों प्रेम से पिघल गया, पहले हृदय पिघला, और हृदय पिघल करके अश्रु के रूप में निकल पड़ा, और थोड़ी देर के बाद में गलते गलते प्रेम के द्वारा द्रवित होकर के एकदम ये सब गल गया, और एकदम भाव में विभोर। बलदेव जी की यही अवस्था हुई, और सुभद्रा जी की यही अवस्था। सुदर्शन जी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो और भी गल करके न जाने क्या हो जाता। नारद जी आकाश से देख रहे थे, झट उतर करके आए, हाथ जोड़ करके, राजे प्रभो आप प्रसन्न है तो यही रूप जो मैंने देखा है यही लोग जगत के सामने आप प्रकट करके रखिए और जगत के लोग देख करके धन्य उनका जीवन सार्थक। कथा वहाँ पर समाप्त हुई। कृष्ण का धीरे 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 शरीर थी वैसा हो गया। कृष्ण के रूप में आए सुभद्रा जी और बलदेव जी अपने रूप में आए। उन्होंने कहा ये मस्त ऐसा ही होगा, मैं समुद्र के किनारे नीलाचल पर्वत के ऊपर में वहीं पर मैं प्रकट हूँ, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी और वहाँ पर तरह तरह की लीलाएं। अब ये कथा उसमें जुड़ गई। अब जब जगन्नाथ जी की सेवा होने लगी तो जगन्नाथ जी ने कहा राजा को कुछ वर मांगो। तो उन्होंने राजा ने कहा जैसे आप वर देंगे तो यही वर दीजिए, मैं निसंतान बन जाऊं, हमको कोई भी संतान न हो। जगन्नाथ जी ने पूछा जी क्यों निसंतान किस लिए होना चाहते? इसलिए कि कोई भी हमारा लड़का या उस वंश में यह ना कर सके कि ये मेरी संपत्ति है, जगन्नाथ मालिक न बने, हमारी समस्त हमारे राज्य का वैभव का जो कुछ मालिक है ये जगन्नाथ जी रहेंगे, मैं उनका सेवक हूँ, ट्रस्टी हूँ और हम लोग उसी रूप में जब तक जगन्नाथ जी रहेंगे तब तक ऐसी ही सेवा चलती रहेगी, नहीं तो वंश होने से फिर गड़बड़ हो जाए। हंस करके मुस्कुरा दी। मैं कह देखो एक बात करो ऐसा होगा, किंतु एक बात होगी उनको निष्कुटता बना दी। वो जो पहले हमारी जो सेवा करता था नील माधव के रूप में वो लोग हमारी एक महीने विशेष रूप से 15 दिन ऑन अवसर और इसके बाद में ये
9 महीने
करीब एक महीना तक वो सेवा करेंगे और उनके वंश में आने वाले जितने लोग हैं नीच जाति होने से भी इसे वंचित नहीं रहेंगे। हमारी सेवा में भक्ति प्रधान है, ज्ञान अथवा रूप कुलीनता विद्या ये सब प्रधान कारण नहीं है, इसलिए इन लोगों का अधिकार रहेगा जैसे हो वो सेवा करें। और जिसने इनका पता लगाया वो विद्यापति के वंश में दो स्त्रियां हैं उनकी, एक है सबरानी और एक है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी वाले से जो संतान पैदा होगी जो वंश चलेगा वो लोग हमारी पूजा करेंगे और सब तरह से जो सब सोच से बात करें। और ये जो सबरानी है इसके पंच से जो ये लोग सुपकार होंगे, ये लोग रसोई बनेंगे बनाएंगे और उससे हमारी सेवा होगी, इसलिए सुपार या सुवार वो लोग जनेऊ इत्यादि उनका नहीं होता, वो लोग ही सेवा करते हैं। और भी विचित्र विचित्र बातें उनको वरदान है, रथ पर वही लोग चढ़ाएंगे। तो वो जब रथ पर चढ़ाते हैं ना जब तक नहीं आएंगे रथ पर नहीं चढ़ते, और उस समय जो राजा जो उनकी सेवा में नियुक्त रहता है वो जगन्नाथ जी की पूजा करेगा, झाड़ू देगा, खेवड़े के जल से सिंचन करेगा, तब वो रथ में चढ़ेंगे और फिर रथ चलेगा अन्यथा नहीं। अभी आज से 15-16 वर्ष पहले गवर्नमेंट जब कांग्रेस की वहाँ पर बनी तो वहाँ के मुख्यमंत्री और दूसरों ने कहा कि ये दलालों की ब्राह्मणों की क्या जरूरत है, राजा की क्या जरूरत है, झाड़ू देना होगा, झाड़ू की क्या जरूरत है, लकड़ी की मूर्ति रथ में चढ़ाते हैं और लेकर के खींचते हैं तो हम लोग इसको करा देंगे, भगवान में विश्वास नहीं उनका। उन्होंने कहा जैसे सब काम अपने आप होगा, चलो राजा की जरूरत नहीं है, पूजा की कोई नहीं, बस राजा को नहीं बुलाया और उन जो चढ़ाने वाले हैं उनको भी आदर नहीं दिया। तो तो पहले तो जगन्नाथ जी मंदिर से नहीं निकल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को फिर मनाया चरणों में, जब कोई क्षमा मांगा तो वो लोग आकर के उनको ले आए। अब ले आए तो अब रथ पर चढ़ाना, सारा दिन लग गया, दिन भर थोड़ा सा ले जाते ऊपर से छलक करके नीचे आ गया, बहुत भार है। वो लोग चढ़ाते हैं 10-5 अपने पीठ से ऐसे ठेलते हैं और ऊपर से 10-5 क्या 50 और रस्सा में बांध करके फेंक करके हाथों में कमर में और कहते हैं साले उठो, ऐसी गंदी गंदी गाली देते हैं जो चौबे लोग यहाँ पर नहीं जानते उन गालियों
को।
अरे राण का और न जाने कितने कितनी गाली
जाने ऐसे गाली सुनने को मिल
जाता है। और मुस्कुराते हुए पान चिबाते हुए जगन्नाथ जी ऊपर में चढ़ते हैं। तो चढ़े नहीं दिन भर सब लोगों ने मिल करके कहा भाई उस राजा को बुलाओ, ये भगवान है, ये देखो हमारे गवर्नमेंट से ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सभी लोग मिलकर के इनको नहीं चढ़ा सकते, देख लो। सारी चेष्टाएं जब फेल हो गई तो राजा बुलाया, राजा वो बहुत दुखी था जो उसको पूछा नहीं था। अब वो राजा आया बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके उनकी आरती की, स्तव स्तुति की, सब जब कर लिया तब फिर जब हाथ लगाया तो सर सर कर करके 2 मिनटों में चढ़ गया और फिर तब सामने झाड़ू दिया